माहे हराम का बदला माहे हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। बस जो तुम पर हाथ बढ़ाए तुम भी उस पर हाथ बढ़ाओ। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जिसकी हदों को तोड़ने से परहेज़ करते हैं। यहाँ फिर एक पॉइंट है सोचने का, क्या मैं हदों को तो नहीं तोड़ती? क्या मैं खाने पीने में हद से तो नहीं बढ़ जाती? क्या मैं खर्च करने में हद से तो नहीं बढ़ जाती? सारे पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, इंशाल्लाह अपना मुहासबा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी काबू में आने लगेंगी। वानफिकू फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। एहसान का तरीका इख्तियार करो कि अल्लाह मुहसिनों को पसंद करता है। जहाँ भी अल्लाह के दीन के गलबे की कोशिश होगी वहाँ माल की ज़रूरत होगी। अगर जंग लगेगी तो जंग के लिए वेपन्स की ज़रूरत होगी, फ़ौजियों के इंतज़ाम की ज़रूरत होगी। इसी तरह अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अगर इल्म का काम होगा तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ज़रूरतें होंगी, जिसके ऊपर अगर लोग खर्च करने से हाथ रोक लेते हैं नतीजे में इस्लाम की तरक्की रुक जाती है और दुश्मनों को गलबा आता है। आप देखिए कि शायद आपने कभी इस चीज़ को फ़ील किया हो, गलियों में जाते हुए लोग मिशनरीज़ के तौर पर लिटरेचर बाँट रहे होते हैं, कैसेट सीडीज़ ज़िंदगियाँ लगाई हुई हैं। आज भी नॉन मुस्लिम जो है अपनी मनी का तकरीबन 25% अपने चर्चिस और अपने दीनी इदारों को देते हैं। इसके बरक्स आज मुसलमानों का मिजाज क्या हुआ? सबसे ज़्यादा खर्च किस पे करते हैं और कमाते क्यों हैं? शादी कर दें, बच्चे की, घर बनाना, अच्छा खिला लो पिला लो, रिश्तेदारियाँ। लेकिन जब लोग दीन पे खर्च करने से पीछे हों तो फिर आप सोचिए कि वही हालत होती है जो इस वक्त हुई है। तीसरे पारे में बहुत ज़्यादा इस पर बात होगी, लेकिन यहाँ इस नुक्ते को बहुत ही अल्लाह ताला ने खूबसूरत बयान किया कि ख़ुद को अपने हाथों हलाकत में ना डालो। जब हम दीन पे दावत के तौर पे, यानी दावत से मुराद इस्लाम को फैलाने के कामों में पैसे नहीं लगाते तो वही पैसा हमारा हथियार ख़रीदने में लग जाता है, जिनसे फिर हम उन दुश्मनों को मारते हैं। तो हथियार ख़रीदने से तो बेहतर है कि इंसान कलम ख़रीद ले। वातिमुल हज वल उमरा लिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो इसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए अल्लाह की जनाब में पेश करो और अपने सर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज़ हो या जिसके सर में कोई तकलीफ़ हो और इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले तो इसे चाहिए कि फ़िदिये के तौर पर रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुँच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का ज़माना आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाए वो हस्बे हैसियत कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मुयस्सर ना हो तो 3 रोज़े हज के ज़माने में और 7 घर वापस पहुँच कर इस तरह पूरे 10 रोज़े रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए है जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हो। अल्लाह के इन अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। इन आयात में हज से मुतल्लिक कुछ फ़िकी मसाइल हैं, इसकी भी तफसीलात जो हैं हज और उम्रे के मसाइल जो किताब इकबाल केलानी साहब की, उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से टॉपिक्स बांध के दिए हुए हैं। कभी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, मौका हो हज या उम्रे का, तो उससे पहले ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बग़ैर इल्म हासिल किए जब हम हज पे भी चले जाते हैं तो यकीन करें कि मैं कभी हंसती भी हूँ सोच के कि हम अपने गुनाह माफ़ करवाने के लिए जाते हैं हज करने, तो जो गुनाह हज के मौके पर कराते हैं वो कैसे माफ़ कराएँगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसने हज किया अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देता है। तो एक यंग सिस्टर से बात हुई तो कहा कि आप हज कर चुकी हैं, तो हंस के कहने लगी अभी थोड़ी करेंगे, अभी तो जवान है, वापस आके फिर गुनाहों में लग जाएंगे, एक ही दफ़ा बूढ़े होंगे जब जाना है दुनिया से उससे पहले हज करेंगे। तो मैंने कहा आप अक्लमंद तो बहुत हैं, बस ये दुआ करें कि अल्लाह आपको मोहलत दे। देखिए हम वहाँ भी पैसे नहीं ज़ाया करना चाहते। हज के महीने सबको मालूम है, आपको मालूम है? चलिए लिखें पॉइंट, क्या मुझे हज के महीने मालूम है? आप कहेंगे हज का तो एक ही महीना होता है, ये बहुत सारे कौन से हैं, तब आप इस पे अपना जायज़ा लेंगे। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नियत करे इसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में इससे कोई शहवानी फेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरज़द ना हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। यानी लोगों को क्यों दिखाते हो? अल्लाह को दिखाओ अपनी नेकियाँ। सफ़र हज के लिए ज़्यादा राह साथ ले जाओ, और सबसे ज़्यादा बेहतर ज़्यादा राह परहेज़कारी है। बस ए होशमंदो मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। بعض دفعہ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا تو نئے سوٹ کیس خریدتے ہیں، نئے جوتے خریدتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اب کوئی پرانی چیز ہم نہیں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتنی تیاریاں نہ کرو، ایک چیز جس کی تمہیں جگہ شاید بعد میں نہ ملے سامان میں رکھنے کی، وہ کیا ہے؟ تقویٰ لے کے جاؤ، وہ دل لے کے جاؤ۔ جس کے گھر جاتے ہیں نا تو اس کا تصور لے کے جاتے ہیں، اس کا خیال لے کے جاتے ہیں۔ حج عمرے کے لیے جانا یہ کوئی ریچول نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے۔ اب دیکھیں جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو پھر اگلا آپ کی خاطر زیادہ کرتا ہے نا، پھر آپ کا خیال بھی زیادہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچتے ہیں اور چونکہ ہم بھی باقی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر چکے ہوتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی زیادہ سنتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو انشاءاللہ ان چیزوں سے بے نیاز کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا، اب ہم لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں ان چیزوں میں کہ اچھا حج کے دوران اگر کوئی غلط کام ہو گیا، دم دینا جس کو بولتے ہیں، تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسی ہی باتوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ کہ لیس علیکم جناحن ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کیا پتہ چلا، دین اور دنیا ساتھ ساتھ۔ نیت حج کی ہو، یعنی نیکی کی نیت ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ بھی حاصل کر لیا، مثلا حج کے لیے گئے، وہاں گئے، کچھ کھجوریں لے گئے، یہاں سے وہاں بیچ دیں، ہلکی پھلکی کوئی تجارت اگر ہو جائے، اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو پھر اس وقت انشاءاللہ گناہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا کھلا دین ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اسلام میں انسان کی نیت کا بہت دخل ہے، ظاہرداری کے ساتھ بہت زیادہ چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تم کو کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو۔ یعنی اجتماعی زندگی سیکھو کہ کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں۔ حج کے موقع پہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہو اور لڑو نہیں۔ آپ دیکھیے کہ حج کا موقع واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی جو کبھی نہیں لڑتے وہ بھی وہاں لڑنے لگتے ہیں، اور یہ وہ واحد موقع ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کر دیا کہ حج کے موقع پہ لڑو نہیں، جھگڑو نہیں۔ کیا طریقہ ہے پھر اس کا، علاج کیا ہے؟ شوہر کی بجائے بھائی کے ساتھ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ایک بڑی پیارا موضوع ہے، اور وہ کیا کہ جو چیز انسان کے دل میں بسی ہوتی ہے نا وہی زبان پہ آنے لگتی ہے۔ تھوڑا سا اوپر سے ہی پڑھیں گے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تم کو کی، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب حج کر کے فارغ ہو جاتے، مزدلفہ اور منا کی جو راتیں ہوتی تھیں، تو وہاں جا کے تو اپنے خاندانوں کے قصے لے کے بیٹھ جاتے، فخر کرتے، میرے باپ نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اچھا آج ہم تو نہیں کرتے، میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک فیملی کے لوگ مل کے جاتے ہیں نا حج عمرے پہ، تو وہ بھی جہاں بیٹھتے ہیں نا پھر خاندان کی باتیں، اس کی بیٹی، اس کا رشتہ، وہ ٹوٹ گیا، وہ یہ لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے تو تم ان کو نہ یاد کرو بلکہ میری طرف توجہ رکھو۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اگر میں آپ سے پوچھوں گی نا کیا آپ صرف دنیا ہی تو نہیں مانگتی، تو کیا کہیں گے؟ نہیں۔ چلیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں گے۔ آپ اپنے نوٹس میں اپنا وہ غم لکھیں جس نے آپ کے دل کو گھیرا ہوا ہے، کھلنے والی کیفیت ہے۔ اب وہ خوشی لکھیں جس کا آپ کو انتظار ہے۔ تیسری چیز، اکثر جو دعا مانگتی ہوں وہ کیا مانگتی ہوں؟ اگر کوئی کہے کہ بس ایک دعا مانگو تو کیا مانگوں گی؟ اکثر میں نے دیکھا ہے، اب تو آپ ماشاءاللہ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، عام حالات میں لوگ کہتے ہیں دعا کر دیں، یہ کر دیں، وہ بچوں کی دعائیں، مال کی، گھر کی، شادیوں کی، رشتوں کی، کچھ بھی ناجائز نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کے غم، خوشی، بس اللہ ہمیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف دنیا مت مانگو، بلکہ کیا کہو؟ और कोई कहता है, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे और हमें आग के अजाब से बचा। ऐसे लोग अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते हुए कुछ देर नहीं लगती। देखिए कि यहाँ दुनिया और आखिरत की बात की गई, तो समझ लेते हैं कि दुनिया भी अल्लाह के हाथ में और आखिरत भी उसके हाथ में। कोई शख्स ऐसा हो आपके सामने खड़ा, एक हाथ में उसके कंकर हो और दूसरे हाथ में डायमंड्स हो, आपको चॉइस दी जाए कि कोई एक ले लो, क्या लेंगे? कितने लोग हैं जो कंकर लेंगे और कितने हैं जो डायमंड्स लेंगे? कंकर भी ले लेंगे आप, सब डायमंड लेंगे ना। दुनिया और आखिरत का तकाबुल कर लेना, ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमारी आंखों में चुंझाई जाती है ना, ये आखिरत के मुकाबले में कंकर हैं। आप कोई कीमती चीज़ ले लेते हैं ना किसी दुकान पे जाके, तो जो ऐसी सस्ती चीज़ होती है या कोई हल्की फुल्की होती है, वो दुकानदार आपको फ्री में दे देता है। अल्लाह का भी यही हाल है, जो बंदा आखिरत को मांगता है ना और साथ दुनिया भी मांगेगा, तो अल्लाह उसको दुनिया मुफ्त में दे देता है। वो क्या बोलते हैं इसको उर्दू पंजाबी में, कोई चीज़ लें तो कुछ एक्स्ट्रा जो देते हैं, छूंगा तो ये दुनिया ऐसी मिल जाती है, इसके गम ना लगाएं। यहाँ एक बहुत प्यारा नुक्ता है हम सब के लिए, और वो क्या कि क्या मैं इस दुनिया का गम तो नहीं लगा के बैठी हुई? सारे गमों से यहाँ बैठे बैठे अपने आप को आज़ाद करें। कैसे आप अपने आप को चेक करेंगे? अच्छा मुझे दुनिया का गम है, अच्छा मैंने कब तक जीना है, अच्छा मैंने मर जाना है, अच्छा दुनिया कितने दिन की है, फिर मेरे से पहले भी कभी किसी को ये गम लगा था, फिर उसके साथ क्या हुआ, अच्छा वो बच गया था, मैं भी बच जाऊँगी। यकीन करें आपका जहन ऐसे हल्का होगा कि जिस गम ने आपके दिल को पकड़ा हुआ था ना, उसके ऊपर आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। चलें, आप कोई चीज़ पानी है, घर लेना है आपको, मिसाल है घर घर घर, सुबह घर शाम घर, अपना घर मेरा घर मेरी जन्नत, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई, है ही नहीं पैसे, मैं कहाँ से लाऊँ, मुझे नहीं लेना किसी और के घर के ऊपर अपने नाम की तख्ती नहीं लगवानी, क्या करें? अच्छा घर ले लिया मैंने, मिसाल है, अच्छा फिर मैं मर जाऊँगी, हाँ अच्छा फिर मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अच्छा क़यामत आएगी तो वो जल्जलों में मेरा घर टूटेगा, नहीं मैं तो वहाँ लूँगी जहाँ पे जाके कुछ नहीं ख़राब होगा, मैं इधर ही ठीक हूँ, अच्छा बड़ा घर लूँगी फिर उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी, अच्छा उसके अंदर फिर बिजली का बिल भी ज़्यादा होगा। इस तरह खुद से बातें किया करें, आप अपने वो खुशियों से भी बेनियाज हो जाएंगे और गमों से भी बेनियाज हो जाएंगे, और आप महसूस करेंगे कि आपकी नज़रें जूँ ही आखिरत पर लगेंगी। अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में दुनिया आपके पाँव में जलील होके आएगी। एक वो शख्स है जो दुनिया के पीछे भागता है और एक वो है जिसके पीछे दुनिया भागती है। ये दुनिया एक तितली की तरह है, बटरफ्लाई, इसको पकड़ने के लिए भागते हैं ना तो ये आपसे भी आगे जाती है, और आप कहते हैं मैंने नहीं पकड़नी, जो ही आप मायूस होकर बैठ जाते हैं ना तो वो आपके हाथ पे आके बैठ जाती है। अपने आप को उसके कामों में लगा लें, वो आपके काम कर देगा। एक हदीस का खुलासा आपके सामने रख देती हूँ कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में लगता है ना, अल्लाह ताला उसके दिल को बेगम कर देते हैं, कोई डिप्रेशन कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, बन जाएंगे पकौड़े, आप ना बनाए आपको खुद ही को भेज देगा। लेकिन एक दफ़ा एक बड़ा गम लगा लें, छोटे गम खुद ही निकल जाएंगे। जो बड़ा गम होता है ना वो छोटे गमों से बेनियाज कर देता है। मिसाल देती हूँ कि एक माँ है, अपना सर लपेट के बैठी हुई है कि मुझे बहुत सर में दर्द है, मेरा ख्याल है कि बुखार हो रहा है, मुझे तंग ना करना। जो ही वो लेटती है, थोड़ी देर में वो बच्चा जो पास खेल रहा था वो गिरता है और उसको चोट लग जाती है और खून निकलता है, क्या माँ लेटी रहती है? ऐसे बेसाख्ता होकर उठेगी, उसको याद ही नहीं रहेगा कि मेरा सर दुख रहा था, हुआ क्या, बड़ा गम लग गया तो छोटा गम भूल गया। हम ये बिजली पानियों गैस और इन खाने पीनों के गमों से निकलेंगे ना कब, जब हमें एक बड़ा गम लगेगा, और वो गम क्या कि हमने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, अल्लाह की तरफ जोड़ना है। ये बड़ा मारूफ जुमला है जो हर मेडिकल में जाने वाला बोलता है, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि दुखी इंसानियत की खिदमत करूँ, और वो बाद में वो इंसानियत सिर्फ उसकी फैमिली तक रह जाती है जिनका पेट भरने के लिए उसने भारी फीस रखी होती है। यकीन करें कि अगर हमने ये मिशन अपनी ज़िंदगी का बनाया ना, कि अगर वाकई हमने ये गम बना लिया ना कि हमने लोगों की भूख दूर करनी है, कौन सी, खाना पीना राशन पानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खा रहे हैं बहुत करा रहे हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए, हमने इंशाल्लाह ताला इस साल ये नियत करनी है कि کہ میں نے لوگوں کی روحانی بھوک کا انتظام کرنا ہے، میں نے اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، جو لوگ ابھی تک اس کتاب ہدایت سے دور ہیں ان سب کو میں نے بلانا ہے، لے کے آنا ہے، ان کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے جسم کے تقاضے بہت جب بھاری ہوتے ہیں نا تو ہمیں مشکل لگتا ہے۔ الحمدللہ رمضان میں یہ جو کھانے ری اسکیجول ہو جاتے ہیں، دوپہر کا اور لنچ اکٹھا جا کے افطاری کے پراٹھوں میں بدل جاتا ہے، اور شام کی چائے اور رات کا ڈنر جب وہ مل کے افطاری میں چلا جاتا ہے، یہ ہمیں کتنا بڑا ٹائم دیتا ہے۔ تو اس وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے،